दिस इज़ विवेक कुमार हिंद, BA पार्ट टू, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेस। संयुक्त राज्य अमेरिका की कार्यपालिका। अमेरिका की कार्यपालिका के अंतर्गत दो संस्थाएं आती हैं, प्रथम राष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति का मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान है और मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को परामर्श देने वाली संस्था। अमेरिका का राष्ट्रपति। अमेरिकी संविधान में राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि अमेरिकी संघ की कार्यपालिका शक्ति एक राष्ट्रपति में निहित होगी, लेकिन संविधान के इस वाक्य से राष्ट्रपति की स्थिति स्पष्ट नहीं होती। वस्तुतः कोई भी महत्वपूर्ण संस्था वैसे ही नहीं रहती जैसी कानून उसे बनाता है। यह कथन सबसे अधिक प्रमुख रूप में अमेरिकी राष्ट्रपति के संबंध में कहा जा सकता है। फिलाडेल्फिया सम्मेलन के सदस्य नागरिक अधिकारों तथा स्वतंत्रता और राज्यों को बनाए रखने के बहुत अधिक इच्छुक थे और राष्ट्रपति पद को बहुत अधिक शक्तिशाली नहीं बनने देना चाहते थे, लेकिन संविधान लागू किए जाने के बाद से लेकर अब तक राष्ट्रपति की शक्ति में निरंतर वृद्धि होती रही है। और स्लेसिंगर के शब्दों में कहा जा सकता है कि वॉशिंगटन के समय से लेकर अब तक प्रत्येक राष्ट्रपति पदधारी ने इसे अधिक शक्तिशाली बनाने में योग दिया है। ऑग के शब्दों में अमेरिका का राष्ट्रपति संसार में सबसे महान शासक हो गया है। राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं। राष्ट्रपति पद की योग्यताओं का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 2 की उपधारा 1 में किया गया है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति पद के लिए वही व्यक्ति पात्र होगा जो संयुक्त राज्य अमेरिका का जन्मजात नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष से कम न हो और वह संयुक्त राज्य अमेरिका का कम से कम 14 वर्ष का निवासी रहा हो। इस संबंध में उसके लिए लगातार 14 वर्ष तक अमेरिका में रहना आवश्यक नहीं है, वरन कुल मिलाकर उसके द्वारा अपने जीवन के 14 वर्ष अमेरिका में व्यतीत किए हुए होने चाहिए। व्यवहारिक स्थिति के संबंध में लॉर्ड ब्राइस ने लिखा है कि राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सार्वजनिक जीवन के किसी क्षेत्र में कोई विशेष कार्य करने के लिए प्रसिद्ध रहा हो। वह कांग्रेस का सदस्य, राज्य का गवर्नर, किसी बड़े नगर का मेयर, मंत्रिमंडल का सदस्य, राजदूत, न्यायाधीश अथवा असाधारण रूप से प्रसिद्ध पत्रकार हो सकता है। व्यवहार के अंतर्गत महत्वपूर्ण और घनी आबादी वाले राज्य के निवासी के पद पर चुने जाने के अवसर अधिक रहते हैं। कार्यकाल। फिलाडेल्फिया सम्मेलन में राष्ट्रपति पद के कार्यकाल पर बहुत अधिक मतभेद रहे थे। अंत में पर्याप्त वाद विवाद के बाद संविधान के अनुच्छेद 2 की उपधारा 1 में निश्चित किया गया कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष होगा तथा पुनर्निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। लेकिन प्रथम राष्ट्रपति वॉशिंगटन ने तीसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और इस प्रकार यह परंपरा स्थापित की गई कि राष्ट्रपति 2 अवधियों से अधिक पद पर नहीं रहेगा। परंतु राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने 1940 में तीसरी बार और 1944 में चौथी बार चुनाव लड़कर इस परंपरा को तोड़ा, परंतु चौथी अवधि पूरी करने के पूर्व अप्रैल 1945 में उनका निधन हो गया। 1946 में कांग्रेस के चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ और उस दल ने राष्ट्रपति की तीसरी अवधि के विरुद्ध संविधान में संशोधन विधेयक रखा। कांग्रेस द्वारा पारित करने और राज्यों द्वारा अनुसमर्थन कर दिए जाने पर 1 मार्च 1951 को संविधान में यह 21वां संशोधन हो गया। 21वें संशोधन के अनुसार एक ही व्यक्ति तीसरी बार राष्ट्रपति पद पर नहीं चुना जा सकता है। इसके साथ ही यदि कोई व्यक्ति जब उपराष्ट्रपति पद पर कार्य कर रहा हो तभी राष्ट्रपति पद रिक्त हो जाए और उसी समय उसके द्वारा राष्ट्रपति पद पर कार्य किया जाए, जैसा कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के निधन पर ट्रूमैन द्वारा और कैनेडी के निधन पर लिंडन बी जॉनसन द्वारा पद धारण किया गया, तो उसका कार्यकाल 10 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता है। इसी संशोधन के अनुसार युद्धकाल में कांग्रेस के द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव लड़कर तीसरी बार राष्ट्रपति पद धारण करने के लिए आग्रह किया जा सकता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन। ब्रिटिश राजनीति का सर्वाधिक आकर्षक तत्व यदि सम्राट का पद और व्यक्तित्व है तो अमेरिकी राजनीति का सर्वाधिक रंगीन और आकर्षक तत्व अमेरिकी राष्ट्रपति का निर्वाचन है। राष्ट्रपति पद पर आसीन व्यक्ति से लेकर साधारण से साधारण व्यक्ति द्वारा इसमें रुचि ली जाती है और चुनाव में राष्ट्रव्यापी प्रचार एवं भव्यता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि 1996 में उम्मीदवारों द्वारा इस पद के चुनाव अभियान में लगभग $90 करोड़ की धनराशि का व्यय किया गया। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया पर अमेरिकी संविधान सभा में बहुत अधिक मतभेद था। संविधान सभा के द्वारा अंत में यह निश्चित किया गया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से हो। इस अप्रत्यक्ष निर्वाचन के अंतर्गत जनता द्वारा एक निर्वाचक मंडल का चुनाव किया जाए और निर्वाचन मंडल के द्वारा राष्ट्रपति का। संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य अपनी व्यवस्थापिका के आदेशानुसार निर्वाचक चुने, जिनकी संख्या उस राज्य की सीनेट और प्रतिनिधि सभा के प्रतिनिधियों के बराबर हो। समय आने पर यह निर्वाचक अपने अपने राज्य में एक स्थान पर एकत्रित हों और लिखित रूप में अपने मत 2 व्यक्तियों को दें, जिसमें कम से कम एक उस राज्य का निवासी न हो जिस राज्य की ओर से वे निर्वाचक नियुक्त किए गए हैं। उसके बाद मतों को एक पेटिका में डालकर सीनेट के अध्यक्ष के पास भेज दिया जाए। जो कांग्रेस के दोनों सदनों की उपस्थिति में उन्हें गिनकर परिणाम की घोषणा करे। जिस व्यक्ति को सबसे अधिक मत प्राप्त हो वह राष्ट्रपति निर्वाचित होगा, बशर्ते कि उसके मतों की पूर्ण बहुमत भी प्राप्त हो। उसमें कम मत पाने वाला व्यक्ति उसी प्रकार बहुमत पाने पर उपराष्ट्रपति निर्वाचित होगा।
सुजीत कुमार की आवाज में संयुक्त राज्य अमेरिका की कार्यपालिका का शेष भाग। संविधान द्वारा की गई इस व्यवस्था में कुछ संशोधन हो गए और व्यवहार में तो यह पद्धति नितांत परिवर्तित हो गई है। प्रथमतः संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए एक साथ मतदान की व्यवस्था की गई थी, लेकिन सन 1800 में इस संबंध में कठिनाई उत्पन्न हुई। सन 1800 के उपचुनाव में यद्यपि निर्वाचकों ने स्पष्ट कर दिया कि जेफरसन राष्ट्रपति और बर उपराष्ट्रपति होने चाहिए, किंतु दोनों को निर्वाचक मंडल के 73-73 मत मिले और टाई पड़ गई। अतः संविधान के 12वें संशोधन द्वारा दोनों के लिए अलग अलग मतदान की व्यवस्था कर दी गई। इस प्रक्रिया में दूसरा परिवर्तन संविधान के 23वें संशोधन द्वारा किया गया। इस संशोधन के द्वारा कोलंबिया जिले को भी निर्वाचक मंडल के 3 सदस्य चुनने का अधिकार दिया गया। यद्यपि कोलंबिया जिले को कांग्रेस में प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है, क्योंकि कोलंबिया एक जिला है, राज्य नहीं। इस प्रकार वर्तमान समय में निर्वाचक मंडल के सदस्य 538 हैं, 3 कोलंबिया के प्रतिनिधि तथा वर्तमान समय में कांग्रेस में 535 सदस्य हैं, 435 सदस्य प्रतिनिधि सभा में और 100 सीनेट में। संविधान निर्माताओं द्वारा उपर्युक्त पद्धति अपनाते हुए आशा की गई थी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन शांत और वातावरण में संभव हो सकेगा, किंतु 1800 में ही अमेरिका में राजनीतिक दलों का उदय हो गया और इन दलों ने निर्वाचक मंडल के लिए उम्मीदवार खड़े करने शुरू कर दिए। राजनीतिक दलों के समर्थन से निर्वाचक मंडल के जो सदस्य चुने जाते हैं वे राष्ट्रपति पद हेतु अपने ही राजनीतिक दल के उम्मीदवार का समर्थन करने के लिए वचनबद्ध होते हैं। इस तथ्य ने राष्ट्रपति के निर्वाचन को अप्रत्यक्ष निर्वाचन से प्रत्यक्ष निर्वाचन में परिवर्तित कर दिया। इस प्रकार वर्तमान समय में राष्ट्रपति का निर्वाचन न तो शांत वातावरण में संपन्न होता है और न ही यह निर्वाचन वस्तुतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन रहा है। लॉस्की ने इस संबंध में लिखा है कि संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो विधि अपनाई थी उस पर उन्हें विशेष रूप से गर्व था, परंतु उनकी आशाओं में से इससे अधिक और कोई आशा भंग नहीं हुई है। वर्तमान समय में राष्ट्रपति के निर्वाचन में अपनाई जाने वाली पद्धति के प्रमुखतया 5 चरण हैं, जिनका उल्लेख निम्न प्रकार है। पहला, उम्मीदवारों का मनोनयन। राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रथम चरण देश के विविध राजनीतिक दलों के द्वारा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों का मनोनयन है। 1840 के पूर्व राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों का चयन दल विशेष के सीनेटर और प्रतिनिधि सभा के सदस्य अपनी औपचारिक बैठक में कर लेते थे, परंतु इसमें दल के सामान्य सदस्यों की राय का कोई महत्व नहीं होता था। अतः 1840 से रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों का मनोनयन विविध राजनीतिक दलों के अखिल देशीय सम्मेलनों द्वारा किया जाने लगा। उम्मीदवारों के मनोनयन की यह पद्धति परंपरा के आधार पर अपनाई गई है और इस संबंध में संविधान में कुछ भी नहीं कहा गया है। प्रत्येक दल का राष्ट्रीय समिति अपने अपने दल के सम्मेलन के लिए समय और स्थान का निर्णय करती है और प्रारंभिक व्यवस्था करती है। प्रत्येक दल के राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए प्रतिनिधि विभिन्न उपायों के द्वारा चुने जाते हैं, कुछ प्रारंभिक क्षेत्रों से, कुछ राज्य सम्मेलनों से और कुछ केंद्रीय समितियों द्वारा। इन प्रतिनिधियों की संख्या सामान्यतया 1500 और 300 के बीच होती है। चुनाव वर्ष के जुलाई या अगस्त के महीने में एक बड़े हाल में यह सम्मेलन होता है। सम्मेलन बहुत अधिक उत्तेजना और शोर शराबे के वातावरण में होता है और सम्मेलन में ही दल के प्रमुख नेतागण परंपरा परस्पर सौदेबाजी करते रहते हैं। सम्मेलन में प्रत्येक उम्मीदवार का नाम उसके किसी समर्थक द्वारा ओजस्वी भाषण के साथ प्रस्तावित किया जाता है, फिर कोई अन्य व्यक्ति इसका समर्थन करता है और सभी उम्मीदवारों के संबंध में ऐसा ही होता है। सम्मेलन में नियमित प्रतिनिधियों के अतिरिक्त कुछ वैकल्पिक प्रतिनिधि भी होते हैं जो नियमित प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति में मतदान में भाग लेते हैं। दल के द्वारा उम्मीदवार चुने जाने के लिए आवश्यक है कि वह प्रतिनिधियों के मतों का पूर्ण बहुमत करें। यदि किसी भी उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत प्राप्त न हो तो फिर जिन उम्मीदवारों को पहले मतदान में कुछ थोड़े मत प्राप्त हुए थे उनको छोड़ दिया जाता है और पुनः मतदान होता है। मतदान की प्रक्रिया किसी उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत प्राप्त होने तक जारी रहती है। कई बार मतदान के दौर होते हैं, उदाहरण स्वरूप 1880 में रिपब्लिकन दल के राष्ट्रीय सम्मेलन में गारफील्ड के मनोनयन हेतु 36 बार मतदान हुआ और 1924 में डेमोक्रेटिक दल के राष्ट्रीय सम्मेलन में जॉन डेविड के मनोनयन हेतु 103 बार मतदान करना पड़ा। उपराष्ट्रपति पद के लिए मनोनयन। उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारों की नामजदगी भी राष्ट्रपति पद के समान ही होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में अब इस संबंध में यह परंपरा स्थापित हो गई है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार न केवल अलग अलग राज्यों वरन दो अलग अलग क्षेत्रों से होने चाहिए। इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार उत्तरी राज्यों से हो तथा तो उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार दक्षिणी राज्यों से होना चाहिए। उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रायः क्रॉस संघर्ष नहीं होता और शीघ्र ही कोई ना कोई उम्मीदवार स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर इस पद के लिए दल का उम्मीदवार बन जाता है। दूसरा, चुनाव अभियान। सम्मेलन समाप्त होने के पूर्व राष्ट्रपति पद के लिए मनोनीत उम्मीदवारों के द्वारा अपने दल की एक राष्ट्रीय समिति चुनी जाती है। यह समिति अपना एक प्रधान और कोषाध्यक्ष चुनती है। यह समिति अपने दल के उम्मीदवार के परामर्श से राज्यों में अपने दल के उम्मीदवार के पक्ष में तीव्र अभियान चलाती है। यद्यपि चुनाव कानून के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव अभियान पर अधिकतम खर्च $30 करोड़ ही हो सकता है, परंतु इसका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती। चुनाव अभियान के प्रमुख साधन टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्र और अपने उम्मीदवार के पक्ष में विविध प्रकार के साहित्य का प्रकाशन है। तीसरा, निर्वाचक मंडल का चुनाव। इसके बाद दोनों दलों द्वारा निर्वाचक मंडल के लिए अपने उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं। निर्वाचक मंडल के इन उम्मीदवारों को शपथ लेनी होती है कि चुने जाने पर वे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में ही अपने दल के उम्मीदवारों को मत देंगे। 23वें संशोधन में द्वारा कोलंबिया जिले को निर्वाचक मंडल के 3 सदस्य चुनने का अधिकार प्राप्त होने से अब निर्वाचक मंडल के सदस्यों की संख्या 538 हो गई है। निर्वाचक मंडल का चुनाव लीप वर्ष या चुनाव वर्ष के नवंबर के महीने के पहले मंगलवार को या सरकार द्वारा निर्धारित अन्य किसी तिथि को होता है। निर्वाचकों के प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा चुना जाता है। 1970 में मतदान अधिकार अधिनियम के किए गए संशोधन के आधार पर अब 18 वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति को इन निर्वाचकों के चुनाव में मताधिकार प्राप्त है। दूसरा परिवर्तन यह हुआ कि इसके पूर्व अमेरिका में कम से कम 30 राज्य ऐसे थे जहां वही व्यक्ति मतदान कर सकता था जो कम से कम एक वर्ष राज्य में रहा हो। अब यह अवधि 30 दिन कर दी गई, अर्थात अब वे व्यक्ति भी मतदान कर सकेंगे जो चुनाव के 30 दिन पूर्व विदेश से स्वदेश लौट आएंगे। तीसरे, 1970 के संशोधन में पूर्व मतदाता को अपना नाम पंजीकृत कराने से पूर्व एक साक्षरता परीक्षा देनी होती थी। अब यह प्रतिबंध हटा दिया गया है। निग्रो नागरिक को भी मतदान का अधिकार प्राप्त हो सके, इस दृष्टि से ऐसा किया गया है। राज्यों में निर्वाचक मंडल के सदस्यों का चुनावी सूची प्रणाली के आधार पर होता है, अर्थात मत किसी उम्मीदवार के लिए नहीं वरन दल की सूची के पक्ष में डाले जाते हैं। संविधान में यह भी कहा गया है कि कांग्रेस का कोई सदस्य या संयुक्त राज्य अमेरिका में लाभ के पद पर आसीन कोई व्यक्ति निर्वाचक मंडल का सदस्य नहीं बन सकता। इस निर्वाचक मंडल का कार्य राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति चुनने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मतदान के एक दिन पूर्व राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार मतदाताओं से रेडियो तथा टेलीविजन पर अंतिम अपील करते हैं। निर्वाचक मंडल के सदस्यों का चुनाव व्यक्तिगत न होकर सामूहिक होता है, अर्थात जिस दल को किसी राज्य के मतदाताओं का बहुमत प्राप्त होता है उसी दल के सभी उम्मीदवार राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य चुने जाते हैं। उदाहरण के लिए यदि न्यूयॉर्क राज्य में रिपब्लिकन निर्वाचक सूची को 30 लाख मत मिलते हैं और डेमोक्रेटिक निर्वाचन सूची को 30 लाख एक मत, तो न्यूयॉर्क राज्य से निर्वाचक मंडल के सभी 42 सदस्य डेमोक्रेटिक दल से चुन लिए जाएंगे। राष्ट्रपति का जो उम्मीदवार 538 निर्वाचकों में से 270 स्थान प्राप्त कर लेता है उसे राष्ट्रपति पद प्राप्त होने का विश्वास हो जाता है। चौथा, निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव। निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव एकमात्र औपचारिकता है, क्योंकि ऑग और रे के शब्दों में निर्वाचक मंडल के सदस्य अपने राजनीतिक दल की रिकॉर्डिंग मशीन मात्र होते हैं। चुनाव वर्ष के दिसंबर मास के दूसरे बुधवार को निर्वाचक मंडल के सदस्य अपने अपने राज्य की राजधानियों में एकत्रित होते हैं और राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद के लिए विभिन्न उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करते हैं। मतों की गणना की जाती है और उन्हें प्रमाणीकृत करने के बाद सीनेट के अध्यक्ष के पास भेज दिया जाता है। सीनेट का अध्यक्ष कांग्रेस के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में मतों की गणना करता है और कानूनी तौर पर जीतने वाले व्यक्ति की घोषणा करता है। जब किसी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, यदि राष्ट्रपति पद के 2 उम्मीदवार को बराबर मत प्राप्त हो अथवा किसी को ही मतदाताओं का पूर्ण या निरपेक्ष बहुमत प्राप्त न हो, तो प्रतिनिधि सभा सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले प्रथम 3 उम्मीदवारों में से किसी एक को राष्ट्रपति निर्वाचित कर सकती है। प्रतिनिधि सभा जब इस प्रकार राष्ट्रपति को निर्वाचित करती है, तब प्रतिनिधि सभा में प्रत्येक राज्य को केवल एक मत होता है। प्रत्येक राज्य के सदस्य बहुमत से निर्णय करते हैं कि उनके राज्य का मत किस उम्मीदवार के पक्ष में गिना जाए। यदि किसी राज्य के प्रतिनिधि समान रूप से इस विषय पर बांट जाएं, तो उनका मत गिना नहीं जाता है। 5वां, नवीन राष्ट्रपति का पद ग्रहण। 1933 के पूर्व तक निर्वाचित होने के लगभग 4 मास पश्चात 4 मार्च को नवीन राष्ट्रपति द्वारा पद ग्रहण किया जाता था, किंतु 20वीं संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति 4 मार्च के बजाय 20 जनवरी को अपना पद ग्रहण करता है। इस संशोधन में यह निश्चित किया गया है कि यदि नव निर्वाचित राष्ट्रपति की अपनी पद पर आसीन होने के पूर्व मृत्यु हो जाती है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाएगा। पद ग्रहण के समय राष्ट्रपति को शपथ लेनी होती है जो उसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। शपथ इस प्रकार है, मैं गंभीरतापूर्वक शपथ लेता हूँ कि अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर निष्ठापूर्वक कार्य करूंगा और अपनी योग्यता पर अमेरिका के संविधान का संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा। राष्ट्रपति की पदच्युति, महाभियोग की प्रक्रिया। अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 2 की उपधारा 4 के अनुसार राष्ट्रपति को केवल महाभियोग के आधार पर ही पदच्युत किया जा सकता है और महाभियोग देशद्रोह, भ्रष्टाचार या उन अन्य किसी घोर अपराध या कदाचार के आधार पर ही चलाया जा सकता है। महाभियोग की पद्धति यह है कि प्रतिनिधि सभा का कोई एक या कुछ सदस्य राष्ट्रपति के विरुद्ध उपर्युक्त आधार पर आरोप लगा सकते हैं। इसके बाद ये आरोप किसी न्यायिक समिति या विशेष जांच समिति को दे दिए जाते हैं। जांच समिति द्वारा प्रतिवेदन दिए जाने पर यदि प्रतिनिधि सभा आवश्यक समझे तो वह एक प्रस्ताव तैयार करती है जिसमें राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों का उल्लेख किया जाता है और प्रतिनिधि सभा को यह प्रस्ताव अपने बहुमत में पारित करना होता है। इस आरोप पत्र की एक प्रति सूचनार्थ राष्ट्रपति को भेजी जाती है। इसके पश्चात यह प्रस्ताव सीनेट के पास भेजा जा सकता है। सीनेट निश्चित तिथि को इन आरोपों की जांच होती है, एक न्यायालय के रूप में बैठती है और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इस बैठक की अध्यक्षता करता है। प्रतिनिधि सभा की ओर से भेजा गया प्रतिनिधि सीनेट को आरोपों के बारे में पूरी जानकारी देता है। राष्ट्रपति को अपना बचाव हेतु स्वयं उपस्थित होने या अपने प्रतिनिधियों और वकीलों को भेजने का अधिकार होता है। यदि पूरा छानबीन के बाद सीनेट अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित को राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाए गए आरोप ठीक है तो उसे पदच्युत कर दिया जाता है। यदि किसी राष्ट्रपति ने कोई अपराध किया है तो पदच्युति के बाद उसके विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा चलाया जा सकता है। अब तक केवल एक बार 1867 में राष्ट्रपति एंड्रयू जॉनसन के विरुद्ध महाभियोग लगाया गया था, लेकिन सीनेट में इस प्रस्ताव को बहुमत प्राप्त होने में एक मत की कमी रह गई और राष्ट्रपति को पद से नहीं हटाया जा सका। अमेरिकी इतिहास में दूसरी बार इस प्रकार की स्थिति 1974 में उत्पन्न होने जा रही थी। 28 जुलाई 1974 को प्रतिनिधि सभा की न्यायिक समिति ने प्रतिनिधि सभा से सिफारिश की कि राष्ट्रपति निक्सन के विरुद्ध वाटरगेट कांड के आधार पर महाभियोग चलाया जाए, लेकिन महाभियोग की कार्यवाही प्रारंभ होने के पूर्व ही 6 अगस्त 1974 को निक्सन के द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे दिया गया। राष्ट्रपति की शक्तियां। अमेरिका के संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति की शक्तियां को निर्धारित करने में संविधान निर्माताओं को कठिन समस्या का सामना करना पड़ा। इस संबंध में एक और तो उनके सामने उपनिवेशों के गवर्नरों के अनुभव थे जिसमें उन्होंने देखा था कि शक्तिशाली शासक किस प्रकार जन स्वतंत्र को नष्ट करने का प्रयत्न कर सकते हैं, और दूसरी तरफ उन्होंने परिसंघ के विधान में निर्बल कार्यपालिका के दुष्परिणाम भी देख लिए। अतः अपने परस्पर विरोधी अनुभवों के आधार पर वे एक ऐसी कार्यपालिका का निर्माण करना चाहते थे जो सुशासन स्थापित करने में समर्थ हो लेकिन तानाशाही जैसी स्थिति प्राप्त न कर ले। अमरीकी राष्ट्रपति के रूप में उनके द्वारा एक ऐसे ही पद की व्यवस्था की गई। मूल संविधान द्वारा राष्ट्रपति को पर्याप्त शक्तियां प्रदान की गई थीं। कांग्रेस के अधिनियमों, प्रथाओं, परंपराओं और न्यायिक व्यवस्थाओं के द्वारा भी इस पद की शक्ति में वृद्धि की गई। आज अमरीका के राष्ट्रपति पद के संबंध में फर्ग्यूसन और मैक हेनरी के शब्दों में कहा जा सकता है कि किसी भी प्रजातांत्रिक राष्ट्र द्वारा निर्मित यह सर्वाधिक शक्तिशाली पद है। राष्ट्रपति की व्यापक शक्तियों को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से निम्नांकित शीर्षकों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, कार्यपालिका शक्ति। राष्ट्रपति को यद्यपि अमेरिकी शासन और राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में शक्तियां प्राप्त है लेकिन इनमें सर्वाधिक प्रमुख उसकी कार्यपालिका शक्ति है। संविधान में भी कहा गया है कि कार्यपालिका शक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति में निहित होगी। कार्यपालिका क्षेत्र में उसके विभिन्न कार्य निम्नवत हैं। पहला, कानूनों को लागू करना तथा व्यवस्था बनाए रखना। कार्यपालिका क्षेत्र में उसकी प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण शक्ति संघीय कानूनों को लागू करना और व्यवस्था बनाए रखना है। अनुच्छेद 2 की तीसरी उपधारा के अनुसार राष्ट्रपति सभी संघीय कानूनों को समुचित रूप से लागू करने के लिए उत्तरदायी है। उसका यह प्रमुख दायित्व है कि वह कांग्रेस द्वारा पारित सभी विधियों द्वारा तथा सीनेट द्वारा अनुमोदित सभी संधियों का निष्ठापूर्वक पालन कराए। राष्ट्रपति इस शक्ति का कुछ सीमा तक अपने विवेक के अनुसार प्रयोग करता है। वह इस बात का निर्णय करता है कि किन कानूनों को अत्यधिक कठोरता के साथ लागू किया जाए, किन्हें कम कठोरता के साथ लागू किया जाए तथा किन्हें लागू करने के लिए कोई भी कदम न उठाया जाए। कानून लागू करने के महान दायित्व को पूरा करने में राष्ट्रपति को अटॉर्नी जनरल 25 लाख संघीय कर्मचारियों, न्याय विभाग, सेना और राष्ट्रीय दलों से पूर्व सहायता मिलती है। कानून लागू करने के साथ ही उसका संपूर्ण संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व है। इस दायित्व का संवैधानिक आधार संविधान के अनुच्छेद 4 की उपधारा 4 में वर्णित यह बात है कि संघीय सरकार प्रत्येक राज्य में एक गणतंत्रीय सरकार को गारंटी देती है और प्रत्येक राज्य की बाहरी आक्रमण तथा आंतरिक हिस्सा से रक्षा करेगी। यदि किसी राज्य में गणतंत्रात्मक व्यवस्था को खतरा हो या उस पर बाहरी आक्रमण की आशंका हो तो राष्ट्रपति राज्य के अधिकारियों से प्रार्थना की प्रतीक्षा किए बिना स्वयं अपनी पहल पर कार्य कर सकता है। आंतरिक हिंसा या उपद्रव की स्थिति में राष्ट्रपति राज्य के गवर्नर या विधानमंडल के आग्रह पर ही सैनिक सहायता प्रदान करता है। लेकिन यदि ऐसी स्थिति में संघीय कानूनों की क्रियान्वित में बाधा उपस्थिति हो या संघीय संपत्ति अथवा अंतर्राज्यीय वाणिज्य को खतरा हो तो राष्ट्रपति अपनी पहल पर भी कार्य कर सकता है। अब तक के संवैधानिक इतिहास में अनेक बार विभिन्न राष्ट्रपतियों द्वारा ऐसा किया गया है। राष्ट्रपति व्यवस्था स्थापित करने के लिए राज्यों के शासन तंत्र में हस्तक्षेप कर सकता है और सेना का प्रयोग कर सकता है। दूसरा, प्रशासन का संचालन। राष्ट्रपति कार्यपालिका के अध्यक्ष होने के साथ साथ प्रशासन का सर्वोच्च निर्देशक है। यह देखना राष्ट्रपति का प्रमुख संवैधानिक दायित्व है कि शासन के विभिन्न पदाधिकारी संविधान के उपबंधों, अन्य राज्यों से की गई संधियों तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुरूप कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं। राष्ट्रपति के द्वारा इस हेतु अध्यादेश अथवा अनुदेश, नियम, उपनियम या आदेश जारी किए जा सकते हैं। उसके द्वारा विभिन्न विभागों के अध्यक्षों तथा अन्य अधिकारियों को आदेश जारी किए जा सकते हैं और संबंधित अधिकारियों के लिए इन आदेशों का पालन करना अनिवार्य होता है। वह प्रत्येक विभाग के अधिकारी से किसी विषय पर प्रतिवेदन या संपत्ति की मांग कर सकता है। तीसरा, नियुक्ति और प्रत्युति की शक्ति। राष्ट्रपति की एक महत्वपूर्ण शक्ति विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित है, जिसके आधार पर राष्ट्रपति वास्तविक प्रशासनिक शक्ति प्राप्त करता है और कांग्रेस पर अपना प्रभाव स्थापित करता है। संविधान के अनुसार संघ सरकार द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों को दो भागों में बांटा गया है। पहला, वे उच्च पद जिन पर राष्ट्रपति सीनेट के परामर्श और उनके बहुमत की सहमति से नियुक्तियां कर सकता है, और दो, वे निम्न पद जिन पर कांग्रेस की सहमति से राष्ट्रपति स्वयं अथवा विभागीय अध्यक्ष तथा न्याय नियुक्तियां कर सकते हैं। क्योंकि संविधान में निम्न पदों की व्याख्या नहीं की गई है, इसलिए यह निश्चित करना कि निम्न पदों के अंतर्गत कौन अधिकारी आते हैं और कांग्रेस के अधिकार में हैं और वही इन पदों पर नियुक्ति के ढंग को निश्चित कर सकती हैं। संविधान के अनुसार राजदूतों, अन्य राजदूतों, वाणिज्य दूतों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, विभिन्न आयोग के अध्यक्षों, अनेक सचिवों, विभिन्न संघीय आयोगों के सदस्यों, चुंगी अधिकारियों, राजस्व अधिकारियों और सेना तथा नौसेना में उच्च अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति कर सकते हैं, परंतु सीनेट के द्वारा अपने बहुमत से इन नियुक्तियों की पुष्टि की जानी अनिवार्य है। सामान्यतया मंत्रिपरिषद के सदस्यों, राजदूत, राष्ट्रपति के व्यक्तिगत सहायकों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति को सीनेट के द्वारा पुष्टि प्रदान की जाती है। यद्यपि इसके कुछ अपवाद हैं। शेष जो लगभग 15,000 नियुक्तियां हैं उनके संबंध में सामान्य व्यवहार यह है कि राष्ट्रपति के दल के सीनेट सदस्य राष्ट्रपति के प्रमुख नाम प्रस्तावित करते हैं और सामान्यतः राष्ट्रपति इन्हें स्वीकार कर लेता है। संविधान के 25वें संशोधन के अनुसार उपराष्ट्रपति पद रिक्त हो जाने पर उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, यद्यपि इसे भी सीनेट की स्वीकृति प्राप्त होना अनिवार्य है। चौथा, सीनेट के प्रति शिष्टता। अनेक संघीय पदों, विशेषतया राज्य विशेष से संबंधित संघीय पदों पर एक विशेष पद्धति द्वारा नियुक्तियां की जाती है, जिस सीनेट के प्रति शिष्टता कहा जाता है। यह एक अलिखित नियम या परंपरा है जिसके अनुसार राष्ट्रपति अपने दल के उन सीनेट सदस्यों से नियुक्ति के संबंध में मंत्रणा करता है जो उस राज्य की ओर से सीनेट सदस्य हैं जिसमें नियुक्ति करनी है। यदि राष्ट्रपति ऐसा नहीं करता और अपनी निजी इच्छा से ही नियुक्तियां करता है तो अन्य सदस्य सीनेट के प्रति शिष्टता के नियम के अनुसार संभवतः राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्ति को अस्वीकार कर देंगे। सीनेट के सदस्य शक्ति एक की नहीं समूह की होती है और समूह के बल पर एक शक्तिशाली होता है के सिद्धांत पर आचरण करते हुए एक दूसरे के प्रति शिष्टता बताते हैं। बरतते हैं और राष्ट्रपति की नियुक्ति की शक्ति पर अंकुश रखते हैं। सीनेट के प्रति शिष्टता राष्ट्रपति की शक्ति पर एक अंकुश होते हुए भी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि राष्ट्रपति संरक्षण के बहुत महत्वपूर्ण अधिकारों का उपभोग करता है और हजारों ऊंचे वेतन प्राप्त करने वाले अधिकारियों की नियुक्तियाँ राष्ट्रपति के हाथ में रहती हैं। संविधान के अंतर्गत इस संबंध में स्पष्ट व्यवस्था नहीं की गई है कि राष्ट्रपति अपने द्वारा नियुक्त पदाधिकारियों को पदच्युत कर सकता है अथवा नहीं। संविधान में केवल यह कहा गया है कि देशद्रोह, भ्रष्टाचार या अन्य गंभीर अपराधों के लिए पदाधिकारियों को महाभियोग द्वारा पदच्युत किया जा सकता है, परंतु यह प्रक्रिया निश्चित रूप से कष्टकारी है। पांचवां, क्षमादान का अधिकार। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को अन्य देशों के अध्यक्षों की भांति अपराधियों को क्षमादान करने, उनके दंड को स्थगित करने या कम करने का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति के द्वारा एक ही प्रकार के अपराध में दंडित करने उनके अनेक व्यक्तियों को सर्वक्षमा भी प्रदान की जा सकती है। राष्ट्रपति की इस क्षमादान की शक्ति पर दो प्रतिबंध हैं। प्रथम, राज्यों की विधि के विरुद्ध किए गए अपराधों में दंडित व्यक्तियों को क्षमा करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है, वह केवल संघीय विधि के विरुद्ध किए गए अपराधों में ही क्षमा प्रदान कर सकता है। द्वितीय, राष्ट्रपति महाभियोग द्वारा दंडित व्यक्तियों को क्षमा प्रदान नहीं कर सकता है। छठा, परराष्ट्र संबंधों का संचालन। संयुक्त राज्य अमेरिका की कार्यपालिका के प्रधान होने के नाते अमेरिकी राष्ट्रपति की परराष्ट्र नीति निर्धारित करता है और विश्व के अन्य राज्यों के साथ अमेरिका के परराष्ट्र संबंधों का संचालन करता है। परराष्ट्र संबंधों के संचालन के क्षेत्र में राष्ट्रपति द्वारा निम्न कार्य किए जाते हैं। राजदूतों एवं प्रतिनिधियों की नियुक्ति। राष्ट्रपति राजदूतों एवं राजनयिक तथा व्यापारिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति कर परराष्ट्र संबंधों के संचालन एवं महत्वपूर्ण रूप से भाग लेता है। राजदूतों की नियुक्ति पर सीनेट की सहमति आवश्यक है, अतः अनेक बार राष्ट्रपति अपने विशेष अभिकर्ता की नियुक्ति करते हैं जिन पर सीनेट के समर्थन की आवश्यकता नहीं रहती। राष्ट्रपति निक्सन के प्रथम कार्यकाल में उनके विशेष अभिकर्ता डॉक्टर हेनरी किसिंगर ने अमरीका के साम्यवादी चीन के साथ संबंध सुधारने तथा वियतनाम शांति समझौते से महत्वपूर्ण रूप से भाग लिया। अमरीकी विदेश नीति का प्रवक्ता। अमेरिकी राष्ट्रपति की विदेश नीति का मुख्य प्रवक्ता होता है तथा कांग्रेस को समय समय पर भेजे गए राष्ट्रपति के संदेशों द्वारा की गई महत्वपूर्ण विदेश नीति संबंधी उद्घोषणा को जन्म दिया गया यथा अलगाव सिद्धांत, मुंडो सिद्धांत, ट्रेमून का चार सूत्रीय कार्यक्रम तथा मध्य पूर्व के लिए आइजनहावर सिद्धांत। राष्ट्रपति द्वारा घोषित इन सिद्धांतों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अमरीका की भूमिका को निश्चित किया है। विदेशी सरकारों को मान्यता प्राप्त करना, प्रदान करना। विदेश नीति के क्षेत्र में राष्ट्रपति को एक अन्य उल्लेखनीय शक्ति विदेशी सरकारों को मान्यता प्रदान करने की प्राप्त है। इस अधिकार का प्रयोग राष्ट्रपति स्वविवेक से करता है और कभी कभी वह इसे विदेश नीति के महत्वपूर्ण साधन के रूप में प्रयुक्त करता है। संधियां और प्रशासकीय समझौते। वैदेशिक नीति से संबंधित राष्ट्रपति का सबसे प्रमुख कार्य विदेशी राज्यों से संधियां या समझौते करना है, लेकिन ये संधियां तभी वैध समझी जाती है जबकि सीनेट द्वारा अपने दो तिहाई बहुमत से इनकी पुष्टि कर दी जाए। यदि सीनेट राष्ट्रपति के विरोधी हो तो राष्ट्रपति स्वेच्छानुसार संधियां कम भी नहीं कर सकता। संधियों की क्रियान्वित नियुक्ति हेतु उन पर सीनेट का अनुसमर्थन आवश्यक होता है, अतः अनेक बार राष्ट्रपति दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए संधियों के स्थान पर प्रशासकीय समझौतों का आश्रय लेते हैं क्योंकि इन पर सीनेट के अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होती। प्रशासकीय समझौता दो देशों की कार्यपालिका के प्रधानों के बीच संपन्न होता है। गुप्त कूटनीति के आधार पर राष्ट्रपति को गुप्त समझौते करने की भी शक्ति प्राप्त है। द्वितीय महायुद्ध के काल में रूजवेल्ट ने चर्चिल और अन्य राजनेताओं के साथ गुप्त मंत्रणाएं करके अमरीकी राष्ट्रपति नीति को नया मोड़ दिया था। सातवां, विदेशों में अमरीकी नागरिकों का संरक्षण। राष्ट्रपति का यह भी कर्तव्य है कि वह विदेशी यात्रा करने वाले और प्रवासी अमरीकी नागरिकों को संरक्षण प्रदान करने। यदि प्रवास काल में अमरीकी नागरिक के साथ यहाँ वहाँ दुर्व्यवहार किया जाता है तो राष्ट्रपति ऐसे मामलों में हस्तक्षेप कर हर्जाने की मांग कर सकता है। इन सब के अतिरिक्त अमरीकी राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेता है और अमरीका के सर्वोच्च प्रतिनिधि के रूप में विदेश यात्राएं करता है। वर्तमान समय में अमरीकी राष्ट्रपति की विदेश यात्राएं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर उनका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। यदि पिछले वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत अमेरिका द्वारा अपनाई गई स्थिति का अध्ययन किया जाए तो भी यह बात नितांत अस्पष्ट हो जाती है कि अमेरिका कि विदेश नीति के संचालन में राष्ट्रपति सर्वाधिक प्रमुख रूप से भाग लेता है। यह एक तथ्य है कि वैदेशिक संबंधों का अंतिम नियंत्रण राष्ट्रपति के हाथों में है और एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रपति विदेश नीति को अपनी इच्छा अनुसार दिशा प्रदान कर सकता है। आठवां, सशस्त्र बलों का प्रधान सेनापतित्व। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति है और इस नाते वह जिस प्रकार चाहे सशस्त्र बलों का प्रयोग कर सकता है। राष्ट्र की प्रतिरक्षा का उत्तरदायित्व राष्ट्रपति का है और इस उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए उसे यह स्थिति प्रदान की गई है। संविधान के अनुसार युद्ध की घोषणा करने की शक्ति कांग्रेस को प्राप्त है, लेकिन सशस्त्र बलों को आदेश देने और युद्ध का संचालन करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। व्यवहार के अंतर्गत राष्ट्रपति सशस्त्र बलों का प्रयोग इस प्रकार कर सकता है कि कांग्रेस के सामने युद्ध घोषित करने के अतिरिक्त और कोई मार्ग न रहे। सर्वोच्च सेनापति के रूप में राष्ट्रपति व्यापक शक्तियों का प्रयोग करता है। वह निश्चित करता है कि सेनाएं एकत्र की जाएं तथा हवाई अड्डे और जहाजी बेड़े कहां स्थापित किए जाएं। दोनों महायुद्धों को दृष्टि में रखते हुए यह कहना बहुत अधिक अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि युद्धकाल में उसकी स्थिति लगभग एक अधिनायक जैसी हो जाती है। दूसरा, विधायी शक्तियां। शक्ति विभाजन सिद्धांत पर आधारित अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाने के कारण अमेरिकी संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष रूप से विधि निर्माण की शक्ति प्रदान नहीं की गई है, लेकिन संविधान निर्माता शक्ति विभाजन सिद्धांत की सीमाओं से परिचित थे और उनके द्वारा राष्ट्रपति को विधायी क्षेत्र में कुछ कार्य सौंपे गए थे। पॉटर के शब्दों में, संविधान ने राष्ट्रपति को विधायी प्रक्रिया के प्रारंभ और अंत में स्थान दिया है। राष्ट्रपति अपने इन कार्यों के आधार पर परोक्ष रूप में विधि निर्माण को प्रभावित कर सकता है और वर्तमान समय में तो राष्ट्रपति के ये कार्य इतने बढ़ गए हैं कि इनके आधार पर उसे प्रधान विधायक कहा जाने लगा है। पहला, कांग्रेस को संदेश भेजना। संविधान में व्यवस्था की गई है कि समय समय पर राष्ट्रपति कांग्रेस को संघ की स्थिति के बारे में जानकारी देगा और उसके विचार के लिए ऐसे सुझावों की सिफारिश करेगा जिन्हें वह आवश्यक और लाभकर समझे। राष्ट्रपति कांग्रेस को वार्षिक संदेश भेजते हैं और इन संदेशों में आवश्यक कानूनों के निर्माण की सिफारिश करते हैं। दूसरा, कांग्रेस के विशेष अधिवेशन आमंत्रित करना। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि यदि कोई महत्वपूर्ण या अत्यावश्यक स्थिति उत्पन्न हो जाए तो वह कांग्रेस के अधिवेशन की अवधि बढ़ा सकता है या कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुला सकता है। तीसरा, निषेधाधिकार। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण निषेधाधिकार की शक्ति है। संविधान में कहा गया कि सीनेट और प्रतिनिधि सभा में पारित होने के पश्चात प्रत्येक विधेयक कानून बनने के पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति को विधेयक पर पूर्ण निषेधाधिकार नहीं वरन मर्यादित निषेधाधिकार ही प्राप्त है। उसकी निषेधाधिकार शक्ति के दो रूप हैं, विलंबकारी निषेधाधिकार और जेबी निषेधाधिकार। विलंबकारी निषेधाधिकार, जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए आता है तो राष्ट्रपति उसे अस्वीकृत कर सकता है और अपनी आपत्तियों के साथ उसे उस सदन को लौटा देता है जिसमें वह प्रारंभ हुआ था। यदि पुनः दोनों सदन दो तिहाई बहुमत से इसे पारित कर देते हैं तो वह कानून बन जाता है और इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार राष्ट्रपति का निषेधाधिकार मर्यादित है, पूर्ण नहीं, लेकिन इसका महत्व इस दृष्टि से है कि सदा दो तिहाई बहुमत का मिलना आसान नहीं होता और राष्ट्रपति द्वारा एक बार अस्वीकृत कर दिए जाने पर प्रायः विधेयक समाप्त ही हो जाता है। जे भी निषेधाधिकार, जब कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा हो उस समय राष्ट्रपति के पास यदि कोई विधेयक स्वीकृति के लिए आता है तो राष्ट्रपति के द्वारा उस पर अवकाश के दिनों के अतिरिक्त 10 दिन तक विचार किया जा सकता है। 10 दिन के बाद राष्ट्रपति की बिना स्वीकृति के ही वह विधेयक कानून पर बन जाता है, परंतु यदि इन 10 दिनों में कांग्रेस का अधिवेशन समाप्त हो जाए तो राष्ट्रपति की स्वीकृति न मिलने पर यह विधेयक अपने आप ही निषिद्ध हो जाता है। प्रारंभ में राष्ट्रपतियों ने निषेधाधिकार की शक्ति का प्रयोग सीमित रूप में किया, किंतु बाद में इसका व्यापक प्रयोग होने लगा। राष्ट्रपति निषेधाधिकार की शक्ति के प्रयोग की धमकी देकर भी विधेयक का प्रारूप अपनी इच्छानुसार बनवा सकता है। चौथा, कार्यपालिका आदेश। निषेधाधिकार राष्ट्रपति को निषेधात्मक विधायी शक्ति प्रदान करता है तो राष्ट्रपति के द्वारा सकारात्मक विधायी शक्ति का प्रयोग कार्यपालिका आदेश के माध्यम से किया जाता है। राष्ट्रपति को शासन विषयक आदेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है जिनका कानून के समान ही महत्व होता है। इसे प्रदत्त व्यवस्थापन या अध्यादेश शक्ति भी कहते हैं। व्यवस्थापन को प्रभावित करने के अन्य साधन, उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य साधनों से भी राष्ट्रपति व्यवस्थापन को प्रभावित कर सकता है। यद्यपि संविधान राष्ट्रपति को विधेयकों का प्रारूप निर्धारित करने का अधिकार प्रदान नहीं करता, किंतु व्यवहार में राष्ट्रपति के अधिकांश अधिक प्रशासनिक अनुभव ने उसे यह शक्ति प्रदान कर दी है। कांग्रेस के अंदर और बाहर राष्ट्रपति की एक प्रभावशाली लॉबी होती है जो राष्ट्रपति की इच्छानुसार कानून निर्माण का प्रयत्न करती है। राष्ट्रपति को हजारों पदों पर नियुक्तियां करने का जो अधिकार प्राप्त है उसके आधार पर राष्ट्रपति कांग्रेस सदस्यों पर कृपा कर उनसे बदले में विधि निर्माण क्षेत्र में सहयोग और सद्भाव की आशा कर सकता है। यदि कांग्रेस राष्ट्रपति की इच्छानुसार कानून निर्माण का कार्य नहीं कर रही है तो वह राष्ट्र के सर्वोच्च नेता के रूप में लोकमत से सीधी अपील भी कर सकता है और इन सब के अतिरिक्त कांग्रेस सदस्यों के साथ सम्मेलन और अनुरोध के आधार पर उसके द्वारा विधि निर्माण कार्य को प्रभावित करने का सफल प्रयत्न किया जा सकता है। वस्तुतः राष्ट्रपति विधि के क्षेत्र में पर्याप्त शक्तिशाली होता है। विधि निर्माण के क्षेत्र में राष्ट्रपति की इन समस्त शक्तियों के बावजूद यह मानना होगा कि राष्ट्रपति विधि निर्माण कार्य को प्रभावित ही कर सकता है, नियंत्रित नहीं। विधि निर्माण में उसका वास्तविक प्रभाव स्वयं उसके व्यक्तित्व, कांग्रेस के दोनों सदनों में उसके दल की स्थिति और उसकी नीति की लोकप्रियता पर निर्भर करता है। तीसरा, न्यायिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति को न्यायिक क्षेत्र में शक्तियाँ प्राप्त हैं। सीनेट की सहमति से वह संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है किंतु वह उन्हें पदच्युत नहीं कर सकता। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को अमेरिकी संघ के विरुद्ध किए गए अपराधों के संबंध में अपराधियों के दंड को स्थगित करने या क्षमा प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है, परंतु महाभियोग द्वारा दंडित व्यक्तियों को राष्ट्रपति क्षमादान नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति सर्व क्षमा अर्थात एक साथ अनेक व्यक्तियों को क्षमा भी प्रदान कर सकता है। चौथा, राष्ट्रपति एक दलीय नेता। राष्ट्रपति अपने दल का नेता होता है और इस रूप में भी इसे बहुत अधिक शक्ति तथा प्रभाव प्राप्त होता है। वह अपने दल की राष्ट्रीय समिति के चेयरमैन को नियुक्त करता है और उसके परामर्श से दल के अन्य महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति करता है। उसके दल के पदाधिकारी दल की सभी महत्वपूर्ण नीतियों और राष्ट्रीय समस्याओं के बारे में उससे परामर्श करते हैं और उसके विचार सभी महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णायक होते हैं। यदि राष्ट्रपति के दल को कांग्रेस के दोनों सदनों में बहुमत प्राप्त हो तो वह दलीय नीति के रूप में विधि निर्माण कार्य अपनी इच्छानुसार करवा सकता है। पांचवा, अमरीकी राष्ट्र का सर्वोच्च नेता। इन सब के अतिरिक्त राष्ट्रपति अमरीकी राष्ट्र का सर्वोच्च नेता होता है। अमरीकी जनता नेतृत्व के लिए कांग्रेस की अपेक्षा राष्ट्रपति की ओर ही देखती है। राष्ट्रपति अमरीकी राजनीति का सर्वोच्च व्यक्तित्व है। संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर उसके द्वारा ही किया जा सकता है। इन सब बातों ने उसे राष्ट्र के सर्वोच्च नेता ही स्थिति प्रदान कर दी है और उसे यह स्थिति न केवल आंतरिक राजनीतिक वरन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी प्राप्त होती है। राष्ट्रपति विल्सन ने इस संबंध में लिखा है, समस्त राष्ट्र ने उसे राष्ट्रपति निर्वाचित किया है और वह समस्त राष्ट्र का प्रतिनिधि तथा सर्वोच्च नेता होता है। लेकिन वास्तविक स्थिति बहुत कुछ सीमा तक राष्ट्रपति के अपने व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। संकट काल में तो राष्ट्रपति पद की कोई भी सीमाएं नहीं रहती। मुनरो लिखता है कि युद्ध काल में राष्ट्रपति की शक्तियां उतनी ही अधिक हैं जितनी नेपोलियन या ओलिवर क्रॉमवेल की थी। उपराष्ट्रपति। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में राष्ट्रपति पद के साथ साथ उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। जब अमेरिकी संविधान का निर्माण हो रहा था तो अनेक व्यक्तियों ने उपराष्ट्रपति पद के प्रति कोई उत्साह नहीं दिखाया और बेंजामिन फ्रैंकलिन जैसे व्यक्तियों ने उपराष्ट्रपति को व्यर्थ का महिमावान व्यक्ति भी कहा था, परंतु अन्य सदस्यों ने इस व्यक्ति की आवश्यकता और महत्व पर बल दिया। एक विशेष कारण से उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था करना आवश्यक था। कार्य। संयुक्त राज्य अमेरिका का उपराष्ट्रपति अपने कार्यों की कमी के लिए प्रसिद्ध है और इसी कारण इसका अनेक प्रकार से परिहास किया जाता है और संयुक्त राज्य के महत्वाकांक्षी राजनीतिक इस पद की प्राप्ति की कभी आकांक्षा ही नहीं करते। उपराष्ट्रपति का प्रथम कार्य राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पदच्युति की स्थिति में राष्ट्रपति का पद का कार्यभार संभालना है। उस समय उसे राष्ट्रपति पद के सभी अधिकार तथा शक्तियां प्राप्त होंगी। इस संबंध में 1841 से ही यह परंपरा स्थापित हो गई है कि उसके द्वारा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नहीं वरन राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में इस तरह से 9 उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद धारण कर चुके हैं। उपराष्ट्रपति का दूसरा कार्य सीनेट का सभापतित्व करना है। सीनेट कांग्रेस का द्वितीय सदन है और इसे अपने सभापति को अपने आप चुनने का अधिकार नहीं है। उपराष्ट्रपति ही इसका पदेन सभापति होता है। सीनेट के अध्यक्ष के रूप में उपराष्ट्रपति को कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। सीनेट का सदस्य न होने के कारण उसे मत देने का अधिकार नहीं है, लेकिन किसी विषय पर बराबर मत आए तो निर्णायक मत का अधिकार अवश्य ही प्राप्त है। वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति इन दो कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्य भी संपादित करने लगे हैं। अनेक राष्ट्रपति प्रशासनिक कार्यवाही के संचालन और वैदेशिक संबंधों के निर्वाह में उपराष्ट्रपति से अधिकाधिक सहयोग लेते हुए देखे गए हैं। पिछले 50 वर्षों में विशेष रूप से यह स्थिति देखी गई है। उपराष्ट्रपति पद के कार्य और इसकी स्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि वह राष्ट्रपति का कितना विश्वास पात्र है और वह अपने आप को कितना उपयोगी प्रमाणित करता है। वर्तमान समय में लास्की जैसे लेखकों ने यह सुझाव दिया है कि उपराष्ट्रपति को और अधिक कार्य सौंपे जाएं, जिससे राष्ट्रपति का कार्यभार कुछ हल्का हो सके। राष्ट्रपति का मंत्रिमंडल। अमरीकी संविधान के द्वारा समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्रदान की गई हैं और संविधान के अंतर्गत मंत्रिमंडल की कोई व्यवस्था नहीं की गई। इस संबंध में संविधान में यही उल्लेख है कि राष्ट्रपति सरकार के विभिन्न प्रशासकीय विभागों के अधिकारियों से उनके अपने विभागों से संबंधित विषयों पर लिखित राय ले सकता है। अतः वर्तमान समय में मंत्रिमंडल का जिस रूप में विकास हुआ है वह संवैधानिक परंपरा पर आधारित है। मंत्रिमंडल का उदय। संविधान निर्माता यह अवश्य ही अनुभव करते थे कि राष्ट्रपति को अपने कार्य संचालन में मंत्रणा की आवश्यकता हो सकती है। वह यह आशा करते थे कि राष्ट्रपति सीनेट से विचार विमर्श कर सकेगा। इसी विश्वास से प्रेरित होकर संयुक्त राज्य के प्रति प्रथम राष्ट्रपति वाशिंगटन ने अमेरिका के मूल निवासियों से संबंधित विषयों पर सीनेट से परामर्श मांगा। लेकिन सीनेट सदस्यों का रुख कुछ ऐसा था जैसे सलाह देने का काम उनके लिए गौरवपूर्ण न हो। बाद में राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से किन्हीं विषय पर परामर्श लेने का प्रयत्न किया, किंतु यहाँ भी उसे निराश होना पड़ा क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी ऐसे कानूनी मामले पर अपने विचार प्रकट करने से इनकार कर दिया जो कि उसके सामने मुकदमे के रूप में नहीं आता। अतः राष्ट्रपति ने अपने नीचे के विभागीय अध्यक्षों से सलाह लेना शुरू किया। पहले राष्ट्रपति उनके विचारों को लिखित रूप से मांगता था, बाद में वह इनकी बैठकें बुलाने लगा और इस प्रकार अमरीका में मंत्रिमंडल नामक संस्था का उदय हुआ। मंत्रिमंडल की रचना। मंत्रिमंडल की रचना में समय समय पर परिवर्तन होता रहा है। राष्ट्रपति वाशिंगटन के प्रथम मंत्रिमंडल में तत्कालीन चार विभागों के प्रधान ही थे, लेकिन तब से आवश्यकता अनुसार कांग्रेस के द्वारा नवीन विभागों की स्थापना की गई और आज मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या 12 हो गई है। प्रत्येक सचिव या मंत्री को $34,000 वार्षिक वेतन प्राप्त होता है। मंत्रिमंडल के सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, लेकिन इसे सीनेट की स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए। सीनेट इनके मनोनयन पर स्वीकृति देने से बहुत कम इनकार करती है क्योंकि राष्ट्रपति के मंत्रिमंडल के सदस्य राष्ट्रपति के व्यक्तिगत सहायक होते हैं और इसलिए ऐसा माना जाता है कि उनका चुनाव राष्ट्रपति की पसंद से ही होनी चाहिए। राष्ट्रपति को अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के चयन में बहुत अधिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है, किंतु व्यवहार में मंत्रिमंडल के साथियों का चयन करने में उसके द्वारा अनेक बातों का ध्यान रखा जाता है। मंत्रिमंडल की स्थिति और राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल में संबंध। मंत्रिमंडल की स्थिति के संबंध में विलियम हार्वर्ड टॉफ्ट ने लिखा है कि मंत्रिमंडल राष्ट्रपति की इच्छा का परिणाम मात्र है। इसका कोई विधिवत या संवैधानिक आधार नहीं है। इसके अस्तित्व का आधार केवल परंपरा है। यदि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल का अंत करना चाहे तो वह ऐसा भी कर सकता है। इस प्रकार मंत्रिमंडल की स्थिति राष्ट्रपति के साथ बदलती रहती है। अनेक राष्ट्रपतियों ने मंत्रिमंडल को कोई महत्व नहीं दिया और वे इसे गौण स्थिति में रखते हैं। जैक्सन, ग्रांट, विल्सन व रूजवेल्ट ऐसे ही राष्ट्रपति थे। इसके विपरीत कुछ राष्ट्रपतियों द्वारा मंत्रिमंडल को पर्याप्त महत्व दिया गया। राष्ट्रपति क्लीवलैंड मंत्रिमंडल के सदस्यों को प्रसन्न रखते थे और बुचानन, हार्डिंग और कुलीज मंत्रिमंडल के सदस्यों को पर्याप्त महत्व देते थे। वर्तमान समय में साधारणतया सप्ताह में एक बार मंत्रिमंडल की बैठक अवश्य होती है। युद्ध अथवा अन्य संकट के समय अधिक बैठकें बुलाई जाती जा सकती हैं। इन बैठकों में राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के सदस्यों से विचार विनिमय करते हैं और इनकी कार्यवाही गुप्त ही रखी जाती है। इस संबंध में निर्णायक बात यह है कि प्रशासन का अंतिम उत्तरदायित्व राष्ट्रपति पर ही होता है और मंत्रिमंडल के सदस्यों का काम राष्ट्रपति के आदेशों का पालन करना मात्र है। यदि मंत्रिमंडल का कोई सदस्य ऐसा ना कर सके तो उसे अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। राष्ट्रपति अपने आदेशों का पालन न करने वाले मंत्री को पदच्युत भी कर सकता है और व्यवहार में देखा गया है कि एक निर्बल राष्ट्रपति को भी शक्तिशाली मंत्री को पदच्युत करने में कठिनाई नहीं होती। ब्रोगन इसी पर टिप्पणी करते हुए लिखते हैं कि जिस प्रकार राष्ट्रपति की तनिक सी इच्छा मंत्रिमंडल को बनाती है, उसी प्रकार तनिक सी इच्छा इसे हटा भी सकती है। राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के पारस्परिक संबंधों में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अनेक बार राष्ट्रपति अनेक विभागों के प्रमुखों के बजाय अपने निजी मित्रों और अनौपचारिक परामर्शदाताओं पर अधिक निर्भर करते हैं। नवनिर्माण आर्थिक नीति को अपनाते समय राष्ट्रपति रूजवेल्ट के कुछ विशेष परामर्शदाता थे जो मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं थे, किंतु उन पर राष्ट्रपति अपने मंत्रियों से भी अधिक विश्वास करते थे। राष्ट्रपति निक्सन के प्रथम कार्यकाल में डॉक्टर हेनरी किसिंगर राष्ट्रपति के जितने निकट थे उतना मंत्रिमंडल का कोई भी सदस्य नहीं था। इस प्रकार राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के पारस्परिक संबंध में आधारभूत तथा राष्ट्रपति की श्रेष्ठता है। इस संबंध में लॉस्की के शब्दों में कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति कुछ सीमा तक सारे राष्ट्र का प्रतीक होता है, और यही कारण है कि जब तक वह अपने पद पर रहता है तब तक उसका कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता। यद्यपि मंत्रिमंडल पर राष्ट्रपति की प्रभुता है, लेकिन अमरीकी प्रशासन का अधिकांश कार्य इन प्रमुखों द्वारा ही किया जाता है, और अमरीकी मंत्रिमंडल की अपनी उपयोगिता है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। तुलनात्मक विवेचन। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की विश्व के जिन अन्य पदाधिकारियों के साथ तुलना की जाती है उनमें सबसे प्रमुख हैं ब्रिटिश सम्राट और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। अमेरिकी राष्ट्रपति और ब्रिटिश सम्राट। लॉस्की ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर विचार व्यक्त करते हुए लिखा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति एक सम्राट से कम तथा अधिक है, वह एक प्रधानमंत्री से भी कम तथा अधिक है। उसके पद का जितना ही अधिक सावधानी से अध्ययन किया जाए उतना ही उसकी अनुपमता का बोध होता है। यद्यपि कुछ बातों में ये दोनों एक दूसरे के समान हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बातों में एक दूसरे से नितांत असमान है, और असमानताओं के अंतर्गत केवल कुछ ही बातों में अमेरिकी राष्ट्रपति को ब्रिटिश सम्राट से कम कहा जा सकता है। अधिकांश बातों में वह न केवल ब्रिटिश सम्राट से अधिक वरन बहुत अधिक है। समानता। अमरीकी राष्ट्रपति और ब्रिटिश सम्राट में एकमात्र समानता यह है कि ये दोनों ही संबंधित राज्यों के प्रधान हैं, अतः दोनों को कई औपचारिक कार्य करने होते हैं, जैसे विदेशी राजदूतों का स्वागत करना, समारोहों का उद्घाटन करना, स्वागत समारोह करना और औपचारिक भाषण करना आदि। लेकिन इस क्षेत्र में भी दोनों की स्थिति में महत्वपूर्ण अंतर है। ब्रिटिश सम्राट क्योंकि एक वैधानिक प्रधान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, उसके यह औपचारिक कार्य उसके कर्तव्यों का एक बड़ा भाग है। लेकिन अमरीकी राष्ट्रपति न केवल राज्य वरन राष्ट्रीय प्रशासन का भी प्रमुख होता है, और इस कारण उसके द्वारा किए जाने वाले ये औपचारिक कार्य उसके कर्तव्यों का बहुत छोटा अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण भाग होते हैं। असमानताएं। पहला, ब्रिटिश सम्राट ब्रिटिश राज्य का नाम मात्र का प्रधान होता है, जबकि अमरीका का राष्ट्रपति राज्य एवं शासन दोनों का प्रधान होता है। इंग्लैंड का सम्राट राज्य करता है, शासन नहीं करता। इसका तात्पर्य यह है कि शासन के क्षेत्र में इंग्लैंड के सम्राट को कोई वास्तविक शक्तियां प्राप्त नहीं है। ब्रिटिश सम्राट तो एक वंशानुगत सम्राट है जिसे महिमा और गौरव तो प्राप्त है लेकिन शक्ति नहीं। वस्तु स्थिति यह है कि यद्यपि इंग्लैंड का शासन सम्राट के नाम से चलाया जाता है किंतु सम्राट के पास कोई अधिकार नहीं रह गए, और सम्राट के तथाकथित अधिकारों का प्रयोग कैबिनेट के द्वारा किया जाता है। सम्राट के पास अब केवल प्रोत्साहन, परामर्श और चेतावनी देने का अधिकार ही रह गया है। इसके विपरीत अमरीकी राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका नहीं वरन वास्तविक कार्यपालिका है। उसके द्वारा उन सभी शक्तियों का स्वयं प्रयोग किया जाता है जिनका प्रयोग ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और कैबिनेट करते हैं। वह मंत्रियों की नियुक्ति और प्रच्युति करता है, सेना के विभिन्न अंगों के प्रधानों तथा अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक और राजनीतिक पदों पर नियुक्ति करता है। दूसरा, ब्रिटिश सम्राट को संसद के द्वारा पारित विधेयकों पर अपनी अनुमति देने ही होती है, और रानी डेन के बाद अब तक किसी सम्राट ने निषेधाधिकार की शक्ति का प्रयोग नहीं किया। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति को विलंबकारी निषेधाधिकार तथा जेबी निषेधाधिकार की शक्ति प्राप्त है। निषेधाधिकार की यह शक्ति मर्यादित होते हुए भी वास्तविक है, वर्तमान समय में इसके प्रयोग की प्रवृत्ति बढ़ती ही जा रही है। तीसरा, ब्रिटिश सम्राट को प्रशासनिक आदेश या अध्यादेश जारी करने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है, लेकिन अमरीकी राष्ट्रपति प्रशासनिक आदेश जारी कर सकता है, और वो अन्य अनेक उपायों से भी विधि निर्माण कार्य को भी प्रभावित कर सकता है। चौथा, अमेरिका के राष्ट्रपति तथा उसके मंत्रियों के संबंध भी सम्राट और उसके मंत्रियों के संबंधों से नितांत भिन्न है। ब्रिटेन में सम्राट परामर्श देता है और निर्णय मंत्री करते हैं, लेकिन अमेरिका में निर्णय राष्ट्रपति करता है और मंत्रियों को उसकी आज्ञानुसार चलना होता है। इसमें संदेह नहीं कि सम्राट अमरीकी राष्ट्रपति की तुलना में केवल नाम मात्र का प्रधान होता है, किंतु सम्राट के व्यक्ति तो में जो आकर्षण और उसके पद में जो गौरव है वह राष्ट्रपति के व्यक्तित्व और पद में नहीं। ब्रिटिश सम्राट निष्पक्षता निर्दलीय होता है, और इस कारण ब्रिटेन का प्रत्येक नागरिक उसकी जय जयकार करता है। लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति दलीय प्रतिनिधि होता है, और इस कारण उसे अपने विरोधी पक्ष की आलोचना भी सहन करनी होती है। सम्राट अपने जीवन पर्यंत शासन करता है और उसे अपनी प्रजा में पिता का स्थान प्राप्त होता है, लेकिन अमेरिकन राष्ट्रपति राजनीतिक दल की सहायता से चुनाव के आधार पर और केवल 4 वर्ष की अवधि के लिए इस पद को प्राप्त करता है। उपर्युक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि अमेरिका का राष्ट्रपति ब्रिटिश सम्राट से अधिक भी है और कम भी। अमेरिका का राष्ट्रपति और ब्रिटिश प्रधानमंत्री। अमेरिकी राष्ट्रपति न केवल ब्रिटिश सम्राट से कुछ कम और कुछ अधिक है, वरन वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री से भी कुछ कम और कुछ अधिक है। जबकि ब्रिटिश सम्राट राज्य करता है, शासन नहीं, और ब्रिटिश प्रधानमंत्री शासन करता है राज्य नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति राज्य भी करता है और शासन भी। ब्रोगन के शब्दों में उसके व्यक्तित्व में सम्राट और प्रधानमंत्री दोनों का समावेश है। दूसरे शब्दों में वह एक ऐसा सम्राट है जो कि स्वयं ही अपना प्रधानमंत्री है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री दोनों ही अपने अपने देशों में प्रमुख शासनाधिकारी है और यह कहना निश्चित रूप से बहुत कठिन है कि इनमें से कौन अधिक शक्तिशाली है। यह अवश्य ही एक तथ्य है कि दोनों की स्थिति भिन्न है और उनकी स्थिति में यह भेद दोनों ही देशों की शासन व्यवस्थाओं के मूल भेद संसदात्मक और अध्यक्षतात्मक शासन के भेद के कारण है। इन दोनों पदाधिकारियों की शक्तियों का तुलनात्मक अध्ययन करने के पूर्व दोनों संबंधित देशों की शासन व्यवस्थाओं के भेद को दृष्टि में रखा जाना चाहिए और वह ब्रिटेन के एकात्मक शासन व अमरीकी के संघात्मक शासन का भेद है। ब्रिटेन में एकात्मक शासन होने के कारण ब्रिटिश शासन ब्रिटिश प्रधानमंत्री पूरे ग्रेट ब्रिटेन के लिए कार्य करता है। अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण राष्ट्रपति संघीय क्षेत्र में ही कार्य कर सकता है, इकाइयों के क्षेत्र में नहीं। यद्यपि अमेरिकी संघ में संघीय केंद्रीकरण की प्रवृत्ति देखी जाती है, लेकिन कितना भी केंद्रीकरण क्यों ना हो, संघात्मक शासन व्यवस्था राष्ट्रपति के कार्य क्षेत्र की सीमित अवश्य ही करती है। एक अन्य भेद यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा जिन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है वे संविधान द्वारा स्वयं उसे ही प्रदत्त हैं, किंतु ब्रिटेन के प्रधानमंत्री द्वारा जिन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है वे उसकी अपनी शक्ति न होकर संविधान द्वारा सम्राट को प्रदत्त शक्तियां हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद को कानूनी मान्यता भी अभी हाल में ही प्राप्त हुई है। इस प्रकार अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों का आधार संविधान और कानून है, लेकिन ब्रिटिश प्रधानमंत्री की शक्तियों का आधार प्रथाएं और परंपराएं हैं। लेकिन इस सैद्धांतिक भेद के कारण इन दोनों पदाधिकारियों की नियुक्ति व्यवहारिक स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ा है और वस्तु स्थिति यह है कि आज राजनीतिक राष्ट्रपति को भी यह प्राप्त शक्तियां एक अंश परंपराओं पर ही आधारित है। इन दोनों पदाधिकारियों की शक्तियों का तुलनात्मक अध्ययन निम्न रूपों में किया जा सकता है। पहला, प्रशासनिक क्षेत्र। प्रशासनिक क्षेत्र में अमेरिकी राष्ट्रपति निर्विवाद रूप से ब्रिटिश प्रधानमंत्री से अधिक शक्तिशाली है और उसे यह अधिक महत्वपूर्ण स्थिति दो बातों के कारण प्राप्त है। प्रथमतः, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल निश्चित होता है, लेकिन प्रधानमंत्री का कार्यकाल लोकसदन के विश्वास पर निर्भर करता है और लोकसदन कभी भी अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर कैबिनेट को पदच्युत कर सकता है। यद्यपि 20वीं सदी में लोकसदन द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित किए जाने के उदाहरण अपवाद स्वरूप ही हैं, लेकिन ऐसे अनेक उदाहरण हैं जबकि प्रधानमंत्री के प्रति लोकसदन के विश्वास में कमी होने पर एक के स्थान पर दूसरी सरकार का निर्माण हुआ या प्रधानमंत्री द्वारा लोकसदन को विघटित करवाकर जनता से नवीन आदेश प्राप्त किया गया। प्रधानमंत्री पदधारी के प्रति लोकसदन में तीव्र असंतोष उत्पन्न होने के कारण ही 1990 में मार्गरेट थैचर को त्याग पत्र देना पड़ा तथा उनके स्थान पर जॉन मेजर प्रधानमंत्री बने। लेकिन इसके विपरीत राष्ट्रपति को 4 वर्ष के निश्चित कार्यकाल से पूर्व कांग्रेस महाभियोग के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से पदच्युत नहीं कर सकती है। महाभियोग भी किसी नीति भेद के कारण नहीं चलाया जा सकता, अपितु संविधान के उल्लंघन, देशद्रोह, भ्रष्टाचार या ऐसे ही किन्हीं गंभीर आरोपों के आधार पर चलाया जा सकता है। अब तक महाभियोग का राष्ट्रपति के विरुद्ध कभी भी सफल प्रयोग नहीं किया जा सकता। वर्तमान समय में यह स्थिति यह है कि राष्ट्रपति अपने दूसरे कार्यकाल में संवैधानिक सीमाओं के अंतर्गत रहते हुए पूर्ण स्वच्छंदता के साथ आचरण कर सकता है, क्योंकि अब जनता या कांग्रेस ना तो उसे पुरस्कृत कर सकती है और ना ही दंडित। द्वितीय, यद्यपि ब्रिटिश प्रधानमंत्री और अमरीकी राष्ट्रपति दोनों का ही अपना मंत्रिमंडल होता है, लेकिन अपने मंत्रिमंडल के साथ संबंधों में राष्ट्रपति की स्थिति जितनी शक्तिशाली है, प्रधानमंत्री की स्थिति उतनी ही शक्तिशाली कभी भी नहीं हो सकती है। अमरीकी राष्ट्रपति को अपने मंत्रिमंडलीय साथियों के चयन में जितनी स्वतंत्रता है, प्रधानमंत्री को उतनी स्वतंत्रता नहीं है। लोकसदन द्वारा एक बार चुन लिए जाने के बाद भी प्रधानमंत्री का संपूर्ण राजनीतिक अस्तित्व लोकसदन के बहुमत समर्थन पर निर्भर करता है। इस कारण प्रधानमंत्री अपने दल के महत्वपूर्ण सदस्यों को मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए बाध्य होता है और सामान्यतया मंत्रिमंडल के कम से कम 1-2 सदस्य इतने प्रभावशाली होते हैं कि प्रधानमंत्री कभी भी उन पर पूर्ण प्रभुत्व स्थापित नहीं कर सकता। लेकिन अमेरिकी मंत्रिमंडल के सदस्य राष्ट्रपति के सम्मुख बोने की भांति होते हैं और उनमें से कोई राष्ट्रपति का सफल विरोध नहीं कर पाता। ब्रिटेन में सुस्थापित राजनीतिक परंपरा के अनुसार प्रधानमंत्री के लिए यह आवश्यक है कि वह सभी महत्वपूर्ण विषय निर्णय के लिए कैबिनेट के सामने प्रस्तुत करें। प्रधानमंत्री यह भी चेष्टा करता है कि कैबिनेट के निर्णय सर्वसम्मत हों, लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति को इस बात की स्वतंत्रता है कि मंत्रिमंडल से परामर्श लें अथवा न लें, और यदि वह मंत्रिमंडल से परामर्श लेता है तो वह इस परामर्श का स्वीकार या अस्वीकार करना उसके अपने विवेक पर निर्भर करता है। अमेरिकी मंत्रिमंडल के संबंध में लिंकन ने एक बार महत्वपूर्णतया सत्य ही कहा था कि अमेरिकी मंत्रिमंडल में केवल एक मत, राष्ट्रपति के मत का महत्व होता है। अमेरिका में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति अकेले राष्ट्रपति को प्राप्त है, लेकिन ब्रिटेन में कार्यपालिका शक्ति कैबिनेट सहित प्रधानमंत्री को प्राप्त है। दूसरा, विधायी क्षेत्र में। यद्यपि प्रशासनिक क्षेत्र में अमेरिकी राष्ट्रपति ब्रिटिश प्रधानमंत्री से अधिक शक्तिशाली है, लेकिन अन्य क्षेत्रों में ब्रिटिश प्रधानमंत्री की स्थिति सुदृढ़ है। अमेरिका में राष्ट्रपति कुछ उपायों के आधार पर कांग्रेस और व्यवस्थापन कार्य का को प्रभावित अवश्य ही कर सकता है, लेकिन वह कांग्रेस का स्वामी कभी नहीं बन सकता। इस संबंध में लॉस्की ने लिखा है, वह तर्क कर सकता है, धमकी दे सकता है, खुशामद कर सकता है, समझा सकता है, परंतु वह सदैव कांग्रेस के बाहर है और एक ऐसी इच्छा के अधीन है जिस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। यदि कांग्रेस के दोनों सदनों में राष्ट्रपति को ही बहुमत प्राप्त हो तो भी राष्ट्रपति और कांग्रेस में कुछ सीमा तक द्वेष होता ही है, और कांग्रेस स्वयं व्यवस्थापन कार्य राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार नहीं करती है। लिंकन, विल्सन और रूजवेल्ट जैसे शक्तिशाली राष्ट्रपति भी युद्ध तथा अन्य किसी संकट की अवधि में ही कांग्रेस से अपनी इच्छा अनुसार व्यवस्थापन करवा सके हैं। यदि सामान्य काल में हो सके और इसके साथ ही राष्ट्रपति के विरोधी दल की को कांग्रेस में बहुमत प्राप्त हो तो राष्ट्रपति की स्थिति बहुत अधिक कठिन और कभी कभी तो दयनीय हो जाती है, क्योंकि विरोधी दल राजनीतिक लाभ उठाने की दृष्टि से आवश्यक कानूनों का निर्माण न कर प्रशासन को निर्बल बनाने का प्रयत्न कर सकता है। लेकिन ब्रिटिश प्रधानमंत्री को व्यवस्थापन के क्षेत्र में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। प्रधानमंत्री लोक सदन में बहुमत दल का नेता होता है और बहुमत दल के निश्चित समर्थन के आधार पर वह अपनी इच्छा अनुसार व्यवस्थापन करवा सकता है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री को लोक सदन को विघटित कराने की एक ऐसी शक्ति प्राप्त होती है जिसके आधार पर वह लोक सदन की अपनी इच्छा के सम्मुख झुकने के लिए बाध्य कर सकता है। ब्रोगन ने तुलनात्मक दृष्टि से लिखा है, एक प्रधानमंत्री लोक सदन में अपने बहुमत दल के समर्थन के कारण कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के क्षेत्र में एक ऐसे अधिकारों का उपयोग करता है जिनका उपयोग अमेरिका के सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्रपति भी नहीं कर सके हैं। यदि उन्होंने किया भी है तो बहुत ही थोड़े समय के लिए। तीसरा, वित्तीय क्षेत्र में। वित्तीय क्षेत्र में भी राष्ट्रपति की तुलना में ब्रिटिश प्रधानमंत्री को सुदृढ़ स्थिति प्राप्त है। अमेरिका में बजट ब्यूरो के द्वारा राष्ट्रपति के निर्देशन में तैयार किया जाता है और ब्यूरो के निर्देशन द्वारा प्रतिनिधि सभा में प्रस्तुत किया जाता है। कांग्रेस को बजट में संशोधन करने का पूर्ण अधिकार होता है और व्यवहार में भी कांग्रेस बजट में अनेक कटौतियां और अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन करती है। इससे अमेरिकी राष्ट्रपति को बहुत कठिनाई होती है, लेकिन इस संबंध में ब्रिटिश प्रधानमंत्री की स्थिति सुदृढ़ है। वित्त मंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री की देखरेख में बजट तैयार किया जाता है और वित्त मंत्री उसे लोक सदन के सम्मुख प्रस्तावित करता है। बजट में सदन के द्वारा केवल वे ही परिवर्तन किए जा सकते हैं जो वित्त मंत्री अर्थात सरकार को स्वीकार हो। बजट में कटौती का अर्थ मंत्रिमंडल के प्रति अविश्वास होता है और लोकसभा का बहुमत दल कभी भी अपनी सरकार का पतन नहीं चाहता, इसलिए प्रधानमंत्री लोकसभा में अपने बहुमत की स्थिति से बहुत साधारण से परिवर्तनों सहित बजट पारित करवा लेता है। चौथा, न्यायिक नियंत्रण की दृष्टि से। यदि दोनों पदाधिकारियों के न्यायपालिका के साथ संबंधों या न्यायपालिका पर इनके नियंत्रण की दृष्टि से विचार किया जाए तो भी ब्रिटिश प्रधानमंत्री की स्थिति राष्ट्रपति की तुलना में सुदृढ़ है। ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है और इस कारण ब्रिटिश न्यायपालिका संसद या प्रधानमंत्री के कार्यों का अवैधानिक घोषित नहीं कर सकती, लेकिन अमरीकी राष्ट्रपति पर सर्वोच्च न्यायालय का नियंत्रण है। उदाहरणार्थ अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति रूजवेल्ट की नव निर्माण आर्थिक नीति को अवैधानिक घोषित कर दिया था। पांचवा, दलीय नेता की दृष्टि से। आज की स्थिति में ब्रिटेन और अमेरिका दोनों ही देशों में राजनीतिक दल देश की व्यवहारिक राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री अपने दल का और अमरीका में राष्ट्रपति अपने दल का नेता है, लेकिन दलीय नेता के रूप में प्रधानमंत्री की स्थिति अधिक सुदृढ़ है। इसका एक कारण तो संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का भेद है। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश राजनीतिक दलों में जहां कठोर अनुशासन है, अमेरिकी राजनीतिक दलों का अनुशासन अपेक्षाकृत शिथिल है। डोगन ने इस संबंध में लिखा है, न केवल प्रधानमंत्री राजनीतिक जीवन का ऐसा केंद्र है जैसा केंद्र अमरीकी जीवन में नहीं देखा जाता, वरन वह एक ऐसा रूप में दलीय संगठन का प्रधान होता है जिस रूप में बहुत कम राष्ट्रपति देखे जाते हैं। अमरीकी राष्ट्रपति और ब्रिटिश प्रधानमंत्री पद की तुलनात्मक विवेचना के आधार पर कहा जा सकता है कि जहां राष्ट्रपति प्रशासनिक क्षेत्र में अधिक शक्तिशाली है, प्रधानमंत्री की स्थिति विधायी, वित्तीय और कुछ अन्य क्षेत्रों में अधिक सुदृढ़ है। लॉस्की का कथन सत्य है कि वह अमरीकी राष्ट्रपति ब्रिटिश प्रधानमंत्री से कुछ कम भी हैं और कुछ अधिक भी। इन दोनों पदाधिकारियों में कौन अधिक शक्तिशाली है, इसका कोई ऐसा उत्तर नहीं जो सभी परिस्थितियों में सही उतरे। ब्रोगन और रैमजे म्योर की विचारधारा ब्रिटिश प्रधानमंत्री को अधिक शक्तिशाली समझने की रही है। उनका दृष्टिकोण इस विचार पर आधारित है कि विधायी और वित्तीय क्षेत्र में राष्ट्रपति पद की सीमाएं अनेक बार प्रशासनिक क्षेत्र में भी राष्ट्रपति को निर्भर बना देती है, क्योंकि प्रशासनिक कार्य आवश्यक कानून और वित्त के आधार पर ही संभव हो पाता है। दूसरी ओर यद्यपि मुनरो, ऑग, स्ट्रॉन्ग आदि लेखकों द्वारा इन दोनों को विशद तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया गया, लेकिन वे सामान्यतया राष्ट्रपति को अधिक शक्तिशाली मानते हैं। इन दोनों पदाधिकारियों में एक विशेष समय पर कौन अधिक शक्तिशाली होगा यह अनेक तथ्यों पर निर्भर करता है, जिनमें प्रथम और एक मुख्य तत्व है संबंधित पदाधिकारियों का व्यक्तित्व, कुलीज, बुचानन या ह्यूबर। जैसे राष्ट्रपतियों के द्वारा ग्लैडस्टोन, डिज़रेली, पामस्टन, पील और चर्चिल जैसे प्रधानमंत्रियों का मुकाबला नहीं किया जा सकता है, और न ही चैम्बरलेन, मैकमिलन या सर एलेक डगलस होम जैसे औसत प्रधानमंत्री, जैक्सन, लिंकन या एफडी रूजवेल्ट जैसे राष्ट्रपतियों का मुकाबला कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति की स्थिति तत्कालीन परिस्थितियों और कांग्रेस में उसके दल की स्थितियों पर निर्भर करती है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की स्थिति भी तत्कालीन परिस्थितियों, अपने राजनीतिक दल में उसकी स्थिति और लोकसभा में उसके राजनीतिक दल की स्थिति पर निर्भर करती है। यदि प्रधानमंत्री को अपने दल में निर्विवाद नेतृत्व की स्थिति प्राप्त नहीं है, या लोकसभा में उसके राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं है, या बहुत ही थोड़ा बहुमत प्राप्त है, तो ऐसे प्रधानमंत्री की तुलना में अमरीकी राष्ट्रपति की स्थिति अधिक सुदृढ़ होती है। अमरीका और ब्रिटिश मंत्रिमंडल की तुलना। अमरीका में राष्ट्रपति को परामर्श देने वाली इस समिति के रूप में जिस संस्था का उदय हुआ उसे मंत्रिमंडल कहा जाता है, लेकिन वस्तुतः इसे मंत्रिमंडल का नाम देना उचित नहीं है। मंत्रिमंडल शब्द मंत्रिमंडलात्मक चाहिए, मंत्रिमंडलात्मक शासन व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ है और कैबिनेट या मंत्रिमंडल में इस शासन व्यवस्था के लक्षण होने चाहिए, लेकिन अमरीका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण इस प्रकार के लक्षण विद्यमान नहीं है। लॉस्की के शब्दों में अमरीकी मंत्रिमंडल की कल्पना उस नमूने से कोई मेल नहीं खाती जिसे हम बहुत पुराने समय से यूरोप की प्रतिनिधि सरकारों में देखने के अभ्यस्त हैं। अमरीकी मंत्रिमंडल और ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक ही समानता बताई जा सकती है, और वह यह है कि ये दोनों ही संस्थाएं परंपराओं की देन है, संविधान या कानूनी व्यवस्था की नहीं। इसके अतिरिक्त इन दोनों संस्थाओं में भेद ही भेद है। इन दोनों संस्थाओं के भेद का अध्ययन निम्न रूपों में किया जा सकता है। पहला, मंत्रिमंडल के निर्माण में भेद। अमरीकी मंत्रिमंडल का निर्माण राष्ट्रपति द्वारा, ब्रिटिश मंत्रिमंडल का निर्माण प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है, लेकिन ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रिमंडल के निर्माण में उतनी स्वतंत्रता का उपयोग नहीं किया जा सकता जितनी स्वतंत्रता का उपयोग अमरीकी राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के लिए आवश्यक है कि वह अपने दल के महत्वपूर्ण सदस्यों को मंत्रिमंडल में शामिल करे, वह उनकी उपेक्षा नहीं कर सकता, लेकिन अमरीकी राष्ट्रपति जिन किन्हीं व्यक्तियों को मंत्रिमंडल में शामिल करना या ना करना चाहे उसके द्वारा ऐसा किया जा सकता है। दूसरा, मंत्रियों का कार्यकाल संबंधी भेद। यद्यपि सिद्धांततया ब्रिटिश प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल में मनचाहे परिवर्तन कर सकता है और उसके द्वारा मंत्रिमंडल के किसी भी सदस्य को पदच्युत किया जा सकता है, लेकिन व्यवहार में प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल के सबसे महत्वपूर्ण साथियों को तब तक पदच्युत नहीं कर पाता जब तक कि ऐसा करने के विशेष कारण न हो। इस प्रकार ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्यों का कार्यकाल केवल कुछ ही सीमा तक प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन अमरीकी मंत्रिमंडल के सदस्यों का कार्यकाल पूरी पूरी सीमा तक राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है, और यह बात मंत्रिमंडल के सर्वाधिक शक्तिशाली समझे जाने वाले सदस्यों के संबंध में भी सत्य है। तीसरा, मंत्रिमंडल की स्थिति में भेद। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कैबिनेट के साथ मिलकर समस्त शासन व्यवस्था का संचालन करता है। प्रधानमंत्री इस बात के लिए बाध्य है कि वह सभी विषयों पर मंत्रिमंडल से परामर्श ले और महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय मंत्रिमंडल की सहमति से ही किए जाते हैं, लेकिन अपनी अमेरिकी मंत्रिमंडल तो पूर्ण रूप से राष्ट्रपति के अधीनस्थ एक संस्था है, और यह राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है कि वह इस संस्था का कितना और किस प्रकार से उपयोग करें। इस प्रकार ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य प्रधानमंत्री के सहयोगी होते हैं, अमेरिकी मंत्रिमंडल के सदस्य राष्ट्रपति के सहायक मात्र। चौथा, राजनीतिक सजातीयता का भेद। ब्रिटेन में अब यह परंपरा भली भांति स्थापित हो गई है कि युद्ध या संकटकालीन स्थिति में तो राष्ट्रीय मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में प्रधानमंत्री केवल अपने ही दल के सदस्यों को मंत्रिमंडल में सम्मिलित करता है। इसके विपरीत अमेरिकी मंत्रिमंडल में राजनीतिक सजातीयता नहीं पाई जाती और राष्ट्रपति विरोधी राजनीतिक दल के सदस्यों या दलीय राजनीति से अलग रहने वाले व्यक्तियों को उनकी विशिष्ट योग्यता के आधार पर मंत्रिमंडल में सम्मिलित कर लेता है। पांचवा, मंत्रिमंडल और व्यवस्थापिका में संबंध का भेद। ब्रिटेन में संसदात्मक शासन व्यवस्था है और वहाँ पर मंत्रिमंडल के सदस्य व्यवस्थापिका अर्थात संसद से घनिष्ठ रूप से में संबंधित हैं। मंत्रिमंडल और लोकसदन का कार्यकाल भी एक दूसरे की दया पर निर्भर है। मंत्रिमंडल लोकसदन को विघटित करवा सकता है और लोकसदन मंत्रिमंडल को पच्युत कर सकता है। अमरीका में शक्ति विभाजन सिद्धांत पर आधारित अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है और इस कारण मंत्रिमंडल और कांग्रेस में परस्पर संबंध नहीं है। मंत्रिमंडल के सदस्य कांग्रेस द्वारा किए जाने वाले कानून निर्माण में भाग नहीं लेते और न ही मंत्रिमंडल तथा कांग्रेस का कार्यकाल एक दूसरे पर निर्भर है। छठा, सामूहिक उत्तरदायित्व संबंधी भेद। ब्रिटिश प्रधानमंत्री सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है, जिसका तात्पर्य यह है कि प्रधानमंत्री एक इकाई की भांति कार्य करता है और लॉर्ड मार्ले की भाषा में इसके सदस्य साथ साथ तैरते और साथ साथ डूबते हैं। वित्त मंत्री को विदेश विभाग के दुष्कर्मों का फल भोगना होता है, लेकिन अमेरिकी मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व के आधार पर कार्य नहीं करता। मंत्रिमंडल के सदस्य व्यक्तिगत रूप से केवल राष्ट्रपति के प्रति ही उत्तरदायित्व होते हैं। सातवां, मंत्रियों में राजनीतिक स्तर संबंधी भेद। ब्रिटिश मंत्रिमंडल की सदस्यता उन व्यक्तियों को प्राप्त होती है जिन्होंने समस्त गंभीरता के साथ राजनीति को अपनाया हुआ है और जो एक लंबा तथा सफल राजनीतिक जीवन व्यतीत कर चुके हैं। ब्रिटिश राजनीति में कैबिनेट की सदस्यता सर्वोच्च राजनीति सफलता मानी जाती है और मंत्रिमंडल के कुछ सदस्य तो प्रधानमंत्री के समक्ष ही होते हैं। संयोग उनका साथ दे तो वे इस पद को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखने वाले व्यक्ति मंत्री पद के बजाय सीनेट की सदस्यता के ही इच्छुक होते हैं। मंत्री पद राष्ट्रपति पद को प्राप्त करने की दृढ़ भी नहीं है। अमेरिकी मंत्रिमंडल राजनीतिक दृष्टि से अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण व्यक्तियों का स्थान है। वस्तुतः अमेरिकी मंत्रिमंडल ब्रिटिश मंत्रिमंडल अथवा कैबिनेट की मूल धारणा के अनुरूप नहीं, वरन इससे नितांत भिन्न है। मूल बात सिडनी डी बेली के शब्दों में यह है कि अमरीकी मंत्रिमंडल को उस अर्थ में सरकार नहीं कहा जा सकता जिस अर्थ में ब्रिटिश मंत्रिमंडल को सरकार कहा जाता है।